परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की यह अनादि काल की परंपरा है। संसार में रहने वाले संसारी जीव जब आत्म कल्याण के इच्छुक बन जाते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति दो मार्ग से हुआ करती है। आत्म कल्याण करना है, हमको करना है, यह इच्छा हम में होती है क्या हमारी दूसरे में होती है? आत्म कल्याण की इच्छा जब कभी भी अपने भीतर होती है, दूसरे के मन में भी हो सकती है, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, दुनिया की सबकी सबका कल्याण हो, ये इच्छा दूसरे के मन में भी हो सकती है। परंतु दूसरे के मन में इच्छा होने मात्र से कोई दूसरा कल्याण कर ले, ये कभी संभव है क्या? पर जो इच्छा करता है कि दूसरे का कल्याण हो, ऐसा जो कहता है, वह ऐसा कहना उसका व्यर्थ जाता है या उसके लिए भी कोई फल की प्राप्ति होती है? ये जब हम विचार करते हैं तो फल की प्राप्ति होती है ये बात समझ में आती है, फल की प्राप्ति नहीं होती ऐसा तो समझ में नहीं आता। दूसरा कोई कल्याण करे, यह भावना भाना ये भावना करना दूसरे के प्रति सद्भावना है। दूसरे के प्रति की जाने वाली यह सद्भावना, यह अच्छी हुआ करती है कि बुरी हुआ करती है? तो सभी कहेंगे कि अच्छी ही हुआ करती है। लेकिन आपने भावना भाई और उसने कल्याण नहीं किया, तब यह अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ? इसका उत्तर महाराज हमको मालूम नहीं, आप ही बताओ। दूसरे में भावना भाई कि आपका कल्याण हो और आपने कल्याण नहीं किया और उसकी भावना भाना व्यर्थ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि भावना भाते समय वह दूसरे के कल्याण की भावना भा रहा है, तो वह पाप कर्म का बंध तो नहीं कर रहा है, पुण्य कर्म का ही बंद करता है, और पुण्य कर्म का बंद करता है इसलिए वह पुण्य का फल सामने वाले को नहीं मिलता, उस पुण्य का फल उसे जिसने सद्भावना भाई है उन्हीं के लिए वह प्राप्त होता है। इसको जैन शास्त्रों में, जैनागम में अपाय विषय धर्म ध्यान कहा है। कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विषय। अपाय का अर्थ होता है दुख, विषय का अर्थ होता है विचार करना। संसारी जीव जो संसार में रहते हुए देहधारी बनकर निरंतर दुख में अपने सारे जीवन को पूर्ण कर रहे हैं, उनके दुख को देख करके कोई विचार करता है कि इनका दुख दूर हो, तो भाने वाले को दुख दूर हो ये कहने वाले को, उसका विचार करने वाले जीव को अपाय विषय धर्म ध्यान होता है। ये तीर्थंकरों ने कहा है, जैन शास्त्रों में आता है। अपाय विषय धर्म ध्यान का फल दूसरे को नहीं मिलता, वो स्वयं को मिलेगा। अगर उसके भावना भाने से दूसरा सामने वाला भी यदि जग जाता है और उसकी भावना के अनुरूप यदि सामने वाले में कार्य घटित हो जाता है, तो उस कार्य के अनुरूप वह कल्याण का मार्ग पकड़ करके स्वयं का भी कल्याण करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन यह कब होता है? सामने वाला यदि कल्याण करने के लिए तैयार हो, तो तैयार हुए उस मानसिकता के लिए बाह्य में अपाय विषय धर्म ध्यान वाला कोई मिल जाए, तो दोनों के मिलान होने पर दोनों का हित होता है। जो कल्याण करना चाहता है उसका भी हो जाएगा, और जो करना चाहता है उसके दुख को दूर करके, उसके संसार मार्ग को छुड़ा करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए वो एक सहयोगी बन सकता है। और ऐसा बन जाए तो हम ये कह सकते हैं इसने भी अच्छा किया, और इसके द्वारा, इसके निमित्त से जिस पर यह उपकार हुआ उसके लिए भी भला हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये कहा जाता है। इसलिए अनादि काल से यह परंपरा है इस संसार में, और सबसे विशेष परंपरा तो मनुष्य गति के भीतर ही है। देवगति में जो परंपरा है वो बहुत सीमित है, नरक गति में भी परंपरा है सीमित है, त्रिरंजी गति में भी परंपरा है, उस गति के लिए भी अपनी सीमा है, किंतु मनुष्य गति में विशेष परंपरा इसलिए है कि ये सीमा के बाहर कुछ कर सकता है। कल्याण के विषय को लेकर के, धर्म के विषय को लेकर के, धर्म पुरुषार्थ के विषय को लेकर के सीमातीत कार्य कर सकता है। मैं किसी का उपकार कर सकता हूं, यह जो विचार है उपकार के भाव हैं, ये उपकार के भाव और वह उपकार भी एक सीमा के अंदर ही होता है। परंतु यह सब कुछ नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, यही पूर्ण है ऐसा नहीं है, ये भी अधूरा काम है। दूसरे का उपकार करते करते हम चले जाएंगे तो क्या मोक्ष मिलेगा? दूसरे का उपकार करते समय दूसरे का ही उपकार होता है, अपना भी उपकार होता है, लेकिन सीमा के भीतर। दूसरे का उपकार करने वाला कौन सा विषय? अपाय विषय धर्म ध्यान करता हुआ जो पुण्य बढ़ा रहा है वह पुण्य उसका हित कर रहा और धर्म ध्यान कर रहा है तो अपने पूर्वार्जित पाप कर्मों को भी वह नाश कर रहा है, निर्जरा हो रही है। एक तरफ तो वह निर्जरा करता है, एक तरफ दूसरे का उपकार करता है, अच्छा ही तो हो रहा है लेकिन एक नहीं हो रहा है। ये धर्म पुरुषार्थ तो कहलाएगा लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ या मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष सिद्धि कर लेना इसके माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए जैन शास्त्र सारे के सारे ये बताते हैं कि दूसरे का उपकार शुक्ल ध्यान नहीं है। क्या बताते हैं? दूसरे का उपकार करना शुक्ल ध्यान तो नहीं है, यह धर्म ध्यान है। अपाय विषय का मतलब दूसरे के दुख के संबंध में विचार करना, दया करना, अनुकंपा करना, शक्ति हो तो अपनी शक्ति के अनुसार अपने से जितना बनता है उसके दुख में सहभागी बन करके उस दुख को दूर करो। अब जीव दुखी है तो दुखी जीव कितने मिलते हैं संसार में और सुखी जीव कितने मिलते हैं इस संसार में? संख्या किसकी अधिक है? दुखियों की संख्या अधिक है कि सुखियों की? दुखियों किस किस का दुख दूर करे फिर वो बेचारा? एक को देखे, दूसरे को देखे, तीसरे को देखे, तीन लोग के इन जीवों को देखे, किसके दुख को दूर करना क्या सोचे? दुख दूर करना करने वाला और दुख दूर जिसके द्वारा होता है वह सामने वाला व्यक्ति उनके माध्यम से अपने दुख को दूर कर रहा है तो निमित्त बनकर के आया हुआ व्यक्ति केवल निमित्त कहलाता है। उससे दुख दूर करने के लिए आने पर भी दुख दूर हो ये कोई गारंटी नहीं है। दूसरे का मैं उपकार करता हूँ ऐसा कहते हुए जब आप उपकार करते रहते हैं, उपकार होने की गारंटी नहीं रहती। आप भले ही उपकार करने के लिए खड़े हैं, आपके घर में महाराज आ गए, पर्दा करके अंदर ले गए, काय के लिए ले गए? ये उपकार का काम नहीं है क्या? एक धर्मात्मा के ऊपर महान उपकार करने जा रहे हैं ताकि मेरे आहार के द्वारा उनका रत्नत्रय 24 घंटे तक चलता रहे, उसकी रक्षा हो। रत्नत्रय की रक्षा के लिए दान देना ये उपकार का काम है। ये धर्म ध्यान है क्या शुक्ल ध्यान है? ये धर्म ध्यान कहलाता है। और दान देता देता आज तक कोई भी व्यक्ति दान के काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। किंतु दान देने के कार्य को भी रोककर, दूसरे के उपकार के कार्य को भी रोककर जब वह अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है, दुनिया से कोई विकल्प नहीं, अपने विकल्प को छोड़कर दिगंबर बनकर, ऐसा नहीं कि कपड़े में रह कर के ही, और ऐसा भी कोई व्यक्ति आज तक मोक्ष नहीं गया है। मोक्ष जाते समय दान देना भी रोकना अनिवार्य है तो दान देने के कार्य को भी रोक दिया और मोक्ष मिलता है कि देखेंगे ऐसा कह करके वह गृहस्थ ध्यान में लीन हो गया। उपकार नहीं कर रहा है, स्वयं के ऊपर ही उपकार करने लगा और वो कहता है जब तक मेरा उपकार पूर्णतः नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। मतलब ये है कि मुझे केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ जगत छोड़ करके उठूंगा नहीं। वस्त्रधारी है, वस्त्रधारी अपने ऊपर उपकार कर पाया है क्या? और अपने ऊपर उपकार करने का अर्थ है शुक्ल ध्यान में रहना, शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेना, ये अपना उपकार है, सही सच्चा अपना उपकार। दान देने से भी अपना उपकार होता है, ये बात ठीक है। ये धर्म ध्यान के काल में भी व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा करता है, ठीक है। लेकिन ये नीचे के स्टेज में जो दूसरे के उपकार करते हुए अपना उपकार करता है, इसमें मोक्ष की सिद्धि नहीं। यह क्योंकि धर्म ध्यान है और इस धर्म ध्यान की भूमिका से ऊपर उठ करके जब वह शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाता है तब सही उपकार अपने पर होने लगता है, ये सच्चा उपकार है। और आज पंचम काल में ऐसा सच्चा उपकार कोई भी व्यक्ति, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, अपने ऊपर उपकार करने का ताकत शक्ति नहीं रखता, ये भी महावीर भगवान ने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो महाराज दीक्षा क्यों ले फिर? प्रश्न आता है, यही अच्छा है कि जो दीक्षा लेते हैं उनको अच्छी तरह से दान देना, धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा तो मुनियों की रक्षा से ही असली धर्म की रक्षा होती है। श्रवण संस्कृति की रक्षा का तात्पर्य दान देना। श्रवण संस्कृति जो दो जगह रक्षित होती है, एक मुनि अपने आप में, मुनि अपने आप में रत्नत्रय को विशुद्ध रखते हुए उसका पालन कर रहे हैं, ये भी श्रवण संस्कृति की रक्षा ही है। और ऐसे मुनि को जो श्रावक आहार दान आदि देता है, चतुर्विध दान, वह क्या श्रवण संस्कृति की रक्षा का कार्य नहीं है? अवश्य है, वह भी कार्य है, यह भी कार्य है। इसमें एक न हो और एक हो तब धर्म टिक सकता है क्या? विचार करें, नहीं टिक सकता। एक हो और एक न हो, और श्रवण संस्कृति की रक्षा यह कहते ही जरा विषय व्यापक हो जाता है। संस्कृति की रक्षा का मतलब जो जैसा धर्म का स्वरूप है उसको परंपरा से निर्वाह करना, ले जाना, आगे बढ़ाना, उसको सुरक्षित रखना, कालांतर में भी वह जीवित रहे, यह सावधानी रखना, यह श्रवण संस्कृति की रक्षा है। और श्रवण धर्म टिकने के लिए एक दान आवश्यक चीज है। कौन सा दान? आहार दान। क्योंकि मुनि दीक्षा लेते ही किसी को भूख समाप्त नहीं होती। सुबह एक व्यक्ति ने कहा तीर्थंकर को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती। तो क्या घर में रहते हुए भी भूख नहीं लगती थी? मुनि दीक्षा लेने के बाद भूख लगती है कि नहीं तीर्थंकर भगवान को? तो भूख नहीं लगती है किस दशा में? केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भगवान को भूख नहीं लगती। केवल ज्ञान से पहले पहले तो चाहे तीर्थंकर हो, कामदेव हो, चक्रवर्ती हो, सामान्य जीव हो, सबको भूख लगती है, सभी को भूख है। और यह जो भूख लगती है क्षुधा वेदनी, भूख लगती है क्षुधा वेदनी कर्म है। भूख लगने में दो कर्म कारण हैं, एक मोहनी कर्म और एक असाता वेदनी कर्म। इन दोनों का उदय होने पर पेट में चूहे कूदने लगते हैं। क्या कूदने लगते हैं? चूहे। किधर से घुस जाते हैं वो? कहीं में तो आता है चूहे कूदते हैं भूख लगने पर, तो चूहे पेट में कैसे घुस गए? चूहे नहीं, पेट में चूहे नहीं रहते, पेट में रहते हैं दो कर्म, एक मोहनी कर्म और एक असाता वेदनी कर्म। मोहनी कर्म बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कहता है वो, पर जब असाता वेदनी कर्म कूदने लगता है तो ये मोहनी कर्म को विकल्प होता है, ये क्यों कूद रहा है जरा देख लो। तो इसको शांत करने की इच्छा इसको होती है, मोहनी कर्म को। और फिर आत्मा को विकल्प होता है, आत्मा को विकल्प होता है कि मोहनी कर्म के वशीभूत आत्मा कहने लगता है ये कर्म कुछ मुझे संकेत ले आया है, क्या करना है पूछूं। तो मोहनी कर्म कहता है चूहा कूद रहा है। चूहा का मतलब वो है असाता वेदनी कर्म, वो दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, विकल्प पैदा कर रहा है। इस विकल्प की पूर्ति के लिए तीर्थंकरों को भी आना पड़ा गृहस्थों के घर, उनके पास कोई कमी नहीं थी। तीन लोग ही जिनकी जिनके चरणों में आकर के सेवा में उपस्थितता भक्ति करती थी, ऐसे तीर्थंकर महान होकर के भी किसी के यहाँ घर में जाकर के ऐसा करना पड़ा। और विनोद संकेत मांग नहीं, ऐसे आ गए, संकेत देकर के नहीं, नियम लेकर के आ गए। ऐसा जाऊंगा और इस चूहे को शांत करूंगा, परंतु इस चूहे को शांत करने का भाग्य मेरे में होगा तो शांत करूंगा, नहीं तो लौट करके आ जाऊंगा। ये कोई जरूरी नहीं ऐसे आ गए तो आहार मिल ही जाएगा। पड़गा लेते हैं, तीन प्रदीक्षा लेते हैं, विनय हो गया, नवदा भक्ति हो गई, नियम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, खड़े हो गए, पहला ग्रास दाता ने रख दिया, तीर्थंकर ने ऐसा ऐसा थोड़ा किया, लंबा सा बाल आया। बैठ गए नीचे। और चूहा, चूहे का क्या होगा उसका, अंदर तो ऐसा ही कूद रहा है वो, अब कब तक कूदेगा? कूदेगा कूदेगा, क्या करें हम, कूदता रहेगा। 10 बजे कूदना शुरू हो गया था और उसको शांत करने के लिए पुरुषार्थ किया तो वो पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। हमारा भाग्य नहीं है, हमारा लाभ का योग नहीं है, लौट के आ गए। किसका विकल्प पूर्ण करने गए थे? असाता वेदनी कर्म के निमित्त से जो वेदना हो रही थी, उस वेदना को शांत करने के लिए, वह जो विकल्प उठ रहा था वेदना का, उस विकल्प को दूर करने के लिए चले गए थे। लेकिन अपने विकल्पों को दूर करने के लिए अपना पुण्य भी तो चाहिए। पुण्य ना हो तो कभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर घर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आप डालना भरपूर जाते हैं, निर्विघ्न आहार वो भावना भी रहती है, लेने वाले की भावना है और देने वाले की भी भावना है, और आहार नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है आखिर? अंतराय कर्म। दाता को समझ में तो आता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, अंतराय कर्म का उदय, वहां तो अंतराय कर्म याद आता है, ये तो कर्म का उदय था, ऐसा हो गया, क्या करना, महाराज का आहार नहीं हो पाया, विकल्पित होता है, जरा रोता भी है, आंखों में आंसू भी डालता है, क्या करना, महाराज का आहार नहीं हुआ। थोड़ा सा विकल्प तो होता है उस समय, तो कर्म पर ऐसा विश्वास आता है, ऐसा विश्वास, कैसे मेरे अशुभ कर्म ने क्या कर दिया ये, वहां तो कर्मों पर विश्वास हो जाता है, वहां तो विश्वास होता है, लेकिन खुद खाते समय विश्वास ही नहीं रहता। कुछ भी आ जाए उससे क्या लेने देना, कर्मों से कुछ लेने देना नहीं, पहले चूहा कूद रहा है उसको खिलाना है। आप कुछ भी आ जाए, भोजन छोड़ते हैं या उसमें जो है उसको निकाल के अलग करके स्वाहा कर लेते हैं। मुनि महाराज तो भोजन त्याग देते हैं 24 घंटे के लिए त्याग, कल देखेंगे शोक शम होगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं, कल भी आकर के देखेंगे, भाग्य का उदय होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, अपने ऊपर भी भरोसा रख करके नहीं चलते। मुनि के आत्मा में भी शुभाशुभ कर्म होते हैं, तीर्थंकरों की आत्मा में भी शुभाशुभ कर्म होते हैं, ये सब फल देने के लिए लाइनबद्ध खड़े, और कब तक ये फल देंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता। आदिनाथ भगवान को कितने दिन तक, 6 महीने तक, आदिनाथ भगवान ने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने तक लगातार मेरे को अंतराय आएगा। इसको कहते हैं कर्म। इस कर्म के संबंध में किसी भी विज्ञानी ने खोजबीन आज तक नहीं किया कि रहस्य क्या है। विज्ञानियों ने इसका भी खोज नहीं किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक जैसी ही क्यों होती है, कैसे होती है, इसमें इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य वो क्या है। मनुष्य पैदा हो रहे हैं, सब लोग एक से हैं, मनुष्य मनुष्य जैसे ही लग रहे हैं। इस शरीर का निर्माण कौन करता है? जीव तो केवल गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, और आए हुए उस जीव के शरीर को इसी तरह से करने वाला कौन? हाथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके बाद ही अंगुली होना चाहिए, अंगुली के बाद हाथ नहीं होना चाहिए। नाक इधर ही होना चाहिए, पीछे नहीं, इधर ही होना चाहिए। ऐसा सिस्टमेटिक विधि विधान ये किसका है, ये किसका है? नाम कर्म का। ये कई लोगों को मालूम नहीं है ये किसका सिस्टमेटिक है। कई लोग तो ये कहते हैं वो तो माता के गर्भ में बन जाता है, बस बस क्या, माता के गर्भ में ऐसा ही ये संरचना, ये शरीर की संरचना ऐसी ही क्यों हुई, इस पर विचार करें तो सभी कर्मों में सबसे ज्यादा भेद प्रतिभेद रहने वाले नाम कर्म के अध्ययन करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, इसकी इस पर पीएचडी करने के लिए, संशोधन करने के लिए, शोध करने के लिए करोड़ों पीएचडी बने लौकिक क्षेत्र में, करोड़ों विज्ञानी भी हो चुके होंगे विगत काल में समय समय पर, परंतु नाम कर्म पर विशेष आविष्कार करने वाला भौतिक विज्ञानी आज तक एक भी नहीं हुआ। इस कर्म सिद्धांत पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों करना पड़ेगा? कुछ लोग तो मानते नहीं, उनको कहो पाप मत करना क्योंकि पाप से नरक जाओगे। पुण्य कहा, वो कहते हैं नरक कहाँ है दिखा दो और पाप कर्म भी कहाँ है दिखा दो। अज्ञानी को कुछ तो दिखाना पड़ेगा, आप अज्ञानी कहने से वो नहीं मानेंगे। मैं ज्ञानी हूँ कहता है वो, आप दिखा नहीं रहे इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। आप दिखा नहीं रहे हैं तो हम ही तो ज्ञानी हैं, आप दिखा दो तो हम मान लेंगे। कर्मों को दिखाओ, कहां से दिखाओगे? जेब में है ये देखो, ऐसे होते हैं कर्म। कर्मों को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इतने सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं, इतने सूक्ष्म हैं, उस सूक्ष्मता के बाद और कोई सूक्ष्मता नहीं है पुद्गल वस्तु में। परम परम सूक्ष्मम, ये पुद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म है कि किसी मशीन के माध्यम से उनको पकड़ना संभव नहीं है। और जिस दिन कोई विज्ञानी ने इस कर्म सिद्धांत का आविष्कार कर लेगा, कर्म परमाणु उनको खोज कर उनको पकड़ लेगा, उसको बंधन में डालेगा, उनको निकाल लेगा, लेगा बाहर छोड़ेगा, लेगा बाहर छोड़ेगा, ये प्रक्रिया अगर पकड़ में आ गई तो आपको त्याग तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष जाने का एक मार्ग, अलग से नया मार्ग निकलेगा उस दिन। कैसा निकलेगा? उस विज्ञानी के पास जाओ, उस मशीन के पास बैठो जो कर्म को खींच लेता है, बैठ जाओ वहां, पीठ दे करके बैठो या पीठ दे करके बैठो, पेट दे करके बैठो, पेट वड़गांव में बैठो, कहीं भी बैठो, विज्ञानी को बुला लो और आत्मा को सिद्ध भगवान तत्काल बना देगा। मशीन के पास जाकर के बैठ गए और उस मशीन से मशीन को शुरू किया, उस मशीन ने सारे अपने आत्मा के भीतर जितने चिपके हुए कर्म पुद्गल परमाणु थे उस सबको उसने ग्रहण कर लिया। ऊपर बहुत धूल पड़ी थी छत पर, लोगों ने परसों के दिन उसको सफाई की, एक मशीन लाए थे उसको एक बड़ा पाइप था, इतना मोटा लंबा पाइप छत तक जाता था, जहां कहीं जो ऊपर धूल पड़ी हो तो वहां तक भी जाता था। मशीन शुरू करना, पाइप को पकड़ना, वो क्या करता था, धूल को सारे को खींच करके अपने पेट में बंद कर लेता था मशीन। ऐसी मशीन का आविष्कार हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा हम लोगों को। हाँ, मुनि ननी नहीं बनना पड़ेगा, कपड़े नहीं छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर कुछ भी पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। ये क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, धारण करो और त्याग करो, तपस्या करो, ऐसा बैठो, कमर दुखता है इसको ध्यान मत दो, किसने कहा सब? ऐसा एक मशीन आविष्कार कर लो। कर्म पर अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मशीन तो विश्वास करो। ये विश्वास तैयार करो, मशीन को तैयार करो, और वो मशीन ऐसा हो, कर्म हो या ना हो छोड़ो, पर उस मशीन के माध्यम से आत्मा के भीतर जो भी पुद्गल मटेरियल है वो सारा का सारा बाहर हो जाए, और उस दिन पता चलेगा निश्चित रूप से। उसको खाली करने से, सारे के सारे पुद्गल मटेरियल को खाली करने से, अगर यह शरीर आत्मा छोड़ करके चला गया तो समझ लेना उस दिन वो मोक्ष गया है, सिद्ध भगवान बना है। ऐसी मशीन क्या आ जाएगी दुनिया में एक दिन? कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, बहुत और भी सूक्ष्मता सूक्ष्म से सूक्ष्म मशीन बनने लगे, क्या ऐसी मशीन भी निकलेगी जो कर्मों के पुद्गल परमाणुओं को खींच सके? नहीं। और ये हैं, विज्ञानियों ने नहीं बताया, परंतु धर्म विज्ञानियों ने बताया, तीर्थंकरों ने बताया है। तीर्थंकरों ने ये कहा है, ऐसे भी पुद्गल परमाणु है जिन पुद्गल परमाणुओं के कारण से तुम्हारा यह मनुष्य शरीर निर्मित होता है, मानव शरीर निर्मित होता है, और ऐसे भी कुछ पुद्गल परमाणु हैं जो देव शरीर निर्मित करने वाले हैं, ऐसे भी पुद्गल परमाणु हैं जो नारक अशुभ दुर्गंधमय परमाणु हैं, और वो दुर्गंधमय परमाणुओं को अशुभ वैकरिक शरीर कहा है, जो नारकी शरीर को निर्मित करता है। ऐसे भी पुद्गल परमाणु हैं, मानव शरीर को निर्मित नहीं करता, न देव शरीर को, न नारकी शरीर को, वो त्रियंश शरीर को निर्मित करता है। ऐसे भी पुद्गल परमाणु हैं जिनके उदय के कारण से आप खेत में पानी पिलाते हैं गन्ने को, और वह गन्ने का पेड़ उस पानी को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेता है और मीठा मीठा रस बना लेता है अपने पास। गन्ने का रस बनता पानी के माध्यम से, आपने खाद डाला, पानी डाला, उसमें तो शक्कर तैयार हो गई। शक्कर क्या चीज है? ये शक्कर किस कर्म की देन है? रस जिसकी देन है उसी की देन शक्कर है। कौन से कर्म के उदय से गन्ने का रस बना? नाम कर्म के उदय से गन्ने का रस बना। उस गन्ने के पेड़ में अनंत जीव हैं और वे एकेंद्रीय हैं, उनको भी आहार आवश्यक है, उनके पेट में भी चूहे कूदते। संसारी प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिनको आहार न हो, समस्त संसारी प्राणियों के लिए आहार आवश्यक है। गन्ने के पेड़ के लिए भी आहार चाहिए, वो पानी को खींच लेता है, अपना शरीर बना लेता है। शरीर बना रहा है का मतलब ये है, कुछ पत्ता बना रहा है, कुछ छिलका बना रहा है, कुछ रस बना रहा है, और उसी रस को निकालकर अपन फैक्ट्री में डाल करके गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। ये गुड़ और शक्कर ये किस जीव के शरीर के अंश हैं? ये केंद्रीय जीव के शरीर के अंश हैं। ये उस जीव के शरीर का मटेरियल है वो। उसने जो अपने रस नाम कर्म के उदय से गन्ने का रस बनाया, उसके शरीर को ही हम खाते। जीवो जीवस्य भोजनम्, जीव ही जीव का भोजन है। मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता, खाता है, नहीं खाता है। मनुष्य एक ही इंद्रिय को खाता है, गन्ना खाता है, साग सब्जी खाता है, पानी पीता है, एक इंद्रिय, और पत्थर खाता है, नहीं खाता, खाता है। आप लोगों को क्या मालूम, पत्थर नहीं खाया, लोन क्या है, लोन, लवण, समुद्र का नमक नहीं, लवण क्या है, पृथ्वी में से निकलता है, एक प्रकार का वह पत्थर ही है, हम खाते हैं। आदमी पत्थर खाता है, पानी पीता है, वनस्पति खाता है, ये खाद्य पदार्थ हैं उनके, वनस्पति, पत्थर और क्या, जल, ये आहार है। ये जीव है क्या, नहीं, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जीव का आहार है। और गन्ने का पेड़ क्या खाता है, पानी पीता है। जीवो जीवस्य जीवनम, गन्ने का पेड़ जल खाता है, जल उसका आहार है। जल किसको खाता है, जल तो भूखा ही रहता है महाराज, उसको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी एकेंद्रीय जीव है तो अवश्य उसका भी कुछ न कुछ आहार है और ग्रहण करता है। ऑक्सीजन चाहिए उसको, उसको भी कोई ना कोई बाहर से वस्तु चाहिए, खाता है, बस वो खाता है, आहार अवश्य है। जीव हो और आहार न हो, जीव हो, संसारी जीव हो और आहार न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अग्नि, आग, वो भी खाता है कि नहीं, कुछ घी डाल करके देख लो, खाता नहीं, स्वाह करता है। अग्नि ऑक्सीजन चाहता है, ऑक्सीजन उसका आहार है, विदाउट ऑक्सीजन वह टिक नहीं सकता। एक मोमबत्ती जला लो और उस पर एक ग्लास ठाक लो, कब तक रहेगी मोमबत्ती, एक मिनट, ग्लास के भीतर जितना ऑक्सीजन है, आहार है उसका, उसको जल्दी जल्दी खा लेगा, नहीं मिला तो मरने लग जाएगा, बुझ गया, मर गया। उसके लिए भी आहार है, पृथ्वी के लिए आहार है, जल के लिए आहार है, वनस्पति के लिए आहार है, अग्नि के लिए आहार है, बचा कौन, द्विइंद्रिय के लिए भी आहार है, तीन इंद्रिय के लिए आहार है, आहार सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। उसके लिए भी कोई ना कोई आहार है, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए भी वायु चाहिए, कुछ न कुछ है। अगर वह योग्य आहार नहीं मिला तो वो भी मर जाता है, अचित हो जाता है, है उसका भी आहार, आहार के बिना कोई नहीं है, ये तो निश्चित है। जब जीव किसी गति से आकर पृथ्वी बनता है, एकेंद्रीय बनता है, तो अपने पुत्र शरीर को बनाने के लिए वहीं के परमाणुओं को इकट्ठा करके शरीर बना लेता है, तो वो परमाणु उसके आहार ही हैं। कौन सी समस्या है, इसकी समस्या है, आहार की समस्या ही समस्या सब्जेक्ट। ऐसी ऐसी सुविधा है, आप लोग ध्यान दें, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं वो। संसार में सबसे बड़ी समस्या कौन सी मालूम? लास्ट समस्या आहार। जीवन और मरण ही आहार पर टिका है। और रात दिन आहार के लिए ही अर्थ पुरुषार्थ होता है मनुष्य गति में, कर्म भूमि में, भोग भूमि में नहीं कह रहा हूं, कर्म भूमि में, वहां पर भी पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, आहार पुरुषार्थ जरूर है। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीने के लिए भोग भूमि मनुष्यों को भी कल्प वृक्ष के पास जाना पड़ता है आहार पूर्ति के लिए, और वे आहार ग्रहण करके सेवन करते हैं। क्षुधा वेदनी वहां पर भी है, उनके यहां भी, उनके पेट में भी चूहा कूदते। चूहा किसके पेट में नहीं, संसारी समस्त जीवों के पेट में चूहे हैं, और इसकी शांति के लिए हम आहार करते हैं। यह आहार करना एक अनिवार्य जरूर हो सकता है, लेकिन आहार के पीछे ही हमारा सारा जीवन समर्पित हो जाए, व्यतीत हो जाए, तो हम ज्ञानी हैं क्या अज्ञानी हैं? भोजन दो प्रकार का है, एक भोजन हम जो परोस रहे हैं, ये भी ये धर्म का भोजन, ये ज्ञान का भोजन, ये ज्ञानामृत का भोजन, इसको तो करना कोई चाहता नहीं और केवल आहार ही चाहता है, तो वो संडे संडे प्रवचन सुनने आ सकता है क्या? जिनको केवल यही लगा है तो प्रवचन संडे को सुनना नहीं चाहेगा वो, तो वो पागल है क्या शान्या है? केवल आहार के लिए आप अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को सुखमय रखने के लिए, आयुष आराम रखने के लिए केवल पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ हो रहा है, तो आपका जीवन बहुत अधूरा है। आपका जीवन मानव जीवन के लेवल का नहीं है, आपका जीवन तो किसके लाइक? जस्ट लाइक ए डॉग। डॉग में और अपने में क्या अंतर है? डॉग भी जीवन जी रहा है, सुबह उठता है, आहार के लिए निकलता है, आहार ढूंढता है, खा करके आता है, सोता है, फिर भूख लगती है, फिर आहार के लिए निकलता है, खाना सोना, खाना सोना, एक एक दिन कटा, सारा जीवन मिटा, एक एक जीवन, एक एक दिन कटा, सारे जीवन मिटा, और अंतिम समय तक यदि यह अज्ञान इस प्रकार का नहीं हटा तो जीव कहां जाएगा? हाँ, तो दो रास्ते बताते हैं, या तो जाओ तिरिंच में, या तो जाओ नरक में। धर्म का अर्थ ये भी नहीं कि धर्म का अर्थ स्वर्ग पाना या मनुष्य गति में ही रहना, ये धर्म करने का फल है, यही अंतिम फल है, ऐसा नहीं। धर्म किस लिए किया जाता है? समाधि लेते हैं लोग, संलेखना लेते हैं लोग, समाधि और संलेखना क्या स्वर्ग जाने का केवल साधन है? मनुष्य गति में ही रहने का कोई साधन है? बार बार मनुष्य गति मिले, धर्म किसका साधन है? क्या सात भव तक पति प्राप्त करने का साधन है? वो बताया था पिछले संडे, कई लोग एक इंद्री को पूज करके वो भी धर्म समझते, ये भी धर्म का एक अंग है, और एक इंद्री अवस्था में गए हुए अनंत जीवों की प्रदक्षिणा लगाकर उसको सात डोरी, सात चक्कर डोरी लपेट करके ये कामना करते हैं, ये पतिदेव हमको सात भौतक मिले, यानी ये स्त्री पर्याय से मुक्त होना ही नहीं चाहते, यानी सात भौतक और स्त्री बने रह बन करके रहना चाहते। ऐसा क्यों नहीं कहते हमारे पति पत्नी बने और हम पति बने? जरा सीट चेंज हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं संसार में? कहने से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं। जो इस भाव में पत्नी है अगले भाव में पति बन सकता, अगले भाव में जो पति बनेगा वो अगले भाव में पत्नी बन सकता है। आत्मा तो आत्मा है, तीन वेदों में परिभ्रमण करता रहता है। द्रव्य वेद तीन प्रकार के, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जीव परिभ्रमण करता ही रहता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता। यहाँ बिन मांगे सहज रूप से संसार की सारी पर्यायें मिल जाती है। जो आपके दिल में इच्छाएं प्रकट होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म का सहारा लेने वाला भौतिक सुख की पूर्ति बहुत जल्दी कर लेता है, और धर्म करता हुआ धर्म से भटक कर धर्म करता है और बाहरी क्रिया कांड में अटक जाता है, तो उसको कामना करने पर भी और धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने पर भी कुछ भी नहीं मिलता। ये सत्य विषय है और तथ्य विषय है, समझने की चीज है। मांगो नहीं, मांगने से भविष्य खराब होता है, और नहीं मांगोगे, दिल को साफ सुथरा रखोगे, धार्मिक क्रियाओं को करोगे, भविष्य उज्जवल रहता है। इससे यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा को मांग से खाली करिए, कुछ भी मांगना नहीं। मांगने से मिलता नहीं है तो मांग क्यों रही है? नहीं मांगने से सब कुछ मिलता है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? विश्वास नहीं है क्या? कई लोगों को विश्वास ही नहीं, तो इतना मेहनत किया और मांगना नहीं, व्यर्थ जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मांगो मांगो मांगो। हाँ, 10 लक्षण पर्व के दिन आ रहे हैं सामने। पुरुषार्थ चार प्रकार का अभी बताया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्रावक दशा में आत्म कल्याण का मार्ग श्रावक दशा में भी है। कल्याण के हमने कहा दो मार्ग हैं, आत्मा का हित करने के दो मार्ग हैं, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। कौन सा चाहते बताओ बताओ? मुनि धर्म चाहिए कि श्रावक धर्म चाहिए? मुनि धर्म चाहिए। कुछ नहीं बताते तो हम ही बताते, तो ले लो। आप मुनि धर्म नहीं चाहते, श्रावक धर्म ही चाहते हैं मान के चले, पर मुनि धर्म कभी नहीं चाहिए ऐसे हो क्या? तो कब चाहिए? कभी नहीं चाहिए ऐसा हो क्या? तुम क्या हो? इस जन्म में मुनि धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कहने वाले तो मौन हैं, उनके लिए भी कह रहा हूं। यदि नहीं चाहिए तो अगले जन्म में भी नहीं चाहिए क्या? अगर मान लो अकस्मात मनुष्य भव मिला तो भी मुनि भव, मुनि पर्याय नहीं चाहिए क्या? कभी ना कभी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पर दृढ़ श्रद्धा आस्था है क्या नहीं? यदि पक्का आस्था है तो आप निश्चित रूप से मुनि पर्याय मुझे कभी नहीं चाहिए ये तो कह ही नहीं सकते। यदि मोक्ष पर आस्था है, श्रद्धा है, तो आपको मुनि पर्याय पर इतनी दृढ़ आस्था रहेगी कि ऐसी अवस्था में मैं कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं तरसते रहोगे। और ऐसा जो तरसता है उसको निश्चित रूप से मोक्ष तत्व पर विश्वास रहता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मोक्ष तत्व का श्रद्धान क्या है? आप जो मुनि पर्याय को चाहते हैं, इस भव में भले ही नहीं चाहते, लेकिन अगर आगामी भव में तो पाने की आपकी रुचि है, श्रद्धा है, आस्था है, ये आस्था ही आपका सम्यक्त्व कहलाता है। और ऐसा कौन सा श्रावक है, कौन सा मनुष्य है जो ये कहता हो कि मुझे कभी भी मुनि धर्म नहीं चाहिए, केवल मुझे खाना पीना सोना, खाना पीना सोना इतना ही चाहिए। भव भव में मनुष्य पर्याय मिले, सावकारपन मिले, बैठ के खाऊं, गादी के ऊपर लेटे लेटे ही मर जाऊं, अभी मरते समय भी कष्ट न हो, वेदना न हो, सुख से मर जाऊं, तो दो ही बातें चाहता है, खाना पीना सोना, दूसरा मर जाना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड डॉग? तो फिर अंतर क्या है? त्रियंश गति में भी वो समझ सकता है, एक त्रियंश है, डॉग है, अगर उसको ज्ञानोदय हो गया तो वह भी मनुष्य पर्याय के प्रति आस्था कर बैठ सकता है, मुनि पर्याय के प्रति आस्था कर बैठ सकता है। कुत्ते को संगी पंचेंद्री कहा है क्या नहीं? कहा है। और संगी पंचेंद्री को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति त्रियंश गति में माना है क्या नहीं? माना है। अगर कुत्ता सलट गया तो श्रावक से आगे बढ़ सकता है। कुत्ता अगर समझ गया धर्म को, धर्म पुरुषार्थ को, धर्म के विषय को, तो कुत्ते के परिणाम सुधर सकते हैं और वह शुभ भावों से मरण करके मुनि पर्याय की श्रद्धा के साथ मरेगा। मरने के बाद मनुष्य पर्याय मिलेगी और इस पर्याय में आने के बाद वह अपनी भावना को यहाँ साकार कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये कुत्ता मरण कर मनुष्य बन सकता है और मनुष्य बनकर मुनि बन सकता है और उस मुनि पर्याय से मोक्ष प्राप्त कर सकता। ये सभी बातें जैनागम में चर्चित हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता, कुत्ता क्या मनुष्य बन सकता है और क्या मोक्ष जा सकता है? मोक्ष तो हम जाएंगे। और मोक्ष जाओ कहने से नहीं, खाना पीना सोना ये अच्छा लग रहा है अभी नहीं जाएंगे। खाना पीना कमाना सोना, दस लक्षण सामने आ रहे हैं। देखो आप लोग बहुत जगह से आए हैं, क्या आप लोग चाहोगे समूह शरण में बैठकर दस धर्मों की उपासना इस साल करेंगे? चाहेंगे तो तैयारी कर लेना। क्या तैयारी करना? सामूहिक पूजन करना है। पेट वड़गांव में सुबह भी हमने समझाया था पूरा इसी पर प्रवचन, एक बार और दोपहर को भी कहना था, कह रहा हूं, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है और आप लोगों को दस लक्षण पर्व मनाना केवल साल भर में 365 दिन में 10 ही दिन आते और ये 10 दिन आते हैं केवल श्रावक के लिए, क्या मुनि के लिए? ये किसका धर्म है? 10 धर्म, 10 लक्षण मनाना, पूजन करना श्रावक के लिए। 10 ही दिन वह निकालता है। क्यों निकालता है? हम वैसे तो मुनि नहीं बन रहे हैं और इधर परिग्रह भी नहीं छूट रहा है। मुनि पर्याय की अनुभूति श्रावक अवस्था में ही कुछ मिले प्रसाद, प्रसाद कुछ मिले ये भावना रहती है, तेज भावना भूख लगी रहती है और वो सोचता है कि मुनि का जीवन कैसे है, उत्तम क्षमा यानी क्या, उसकी अनुभूति वो कैसे करते हैं। और ये दस धर्म समझ लेना, ये दस धर्म उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये दस धर्म मुनि के पास ही होते हैं। परिग्रह अवस्था में ही ये प्रकट होते हैं, परिग्रह अवस्था में ये दस धर्म प्रकट होते नहीं हैं, ये नियम है, क्योंकि परिग्रह रहते हुए क्रोध छोड़ना संभव ही नहीं। जरा भी परिग्रह रखा हुआ इधर का उधर हो जाए और आपके घर जाने के बाद वहां नहीं दिखा, मान के चले आप लोगों के चार साड़ी नहीं दिखी दस में से, और आप लोगों के अलमारी में रखे हुए हरे हरे नोट के बंडल नहीं दिखे, कौन सी कषाय उदंग में आ जाएगा, किसने उठा लिया बिना पूछे, ये चोरी है वो फलाना है, वो तो कहते कई बिना उठाते हैं, विकल्प होगा कि नहीं होगा। इस विकल्प के बीच में आप उत्तम क्षमा कभी जीवन में एक सेकंड के लिए भी धारण नहीं कर सकते। जहां परिग्रह होता है वहां पर दस धर्म होते ही नहीं है। एक परमाणु मात्र के प्रति भी अगर मुनि महाराज, मैं मुनि महाराज की बात बता रहा हूं, एक परमाणु मात्र के प्रति भी रागादि भाव रखते हैं और परिग्रह रखते हैं तो उनके जीवन में भी उत्तम क्षमादि दसों धर्म सारे उसमें से एक भी नहीं है। आत्मा परिग्रह से जुड़ते ही धर्म समाप्त होते और उन धर्मों की पूजा आप करने के लिए एक साल में दस दिन निकालते हो क्या? नहीं, मैंने तो दक्षिण में तो ये नहीं देखा, यहाँ दक्षिण में स्त्रियां ही दस लक्षण मनाती है, पुरुष तो ना तो पूजा करता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता। जैसे ये जो है ना साल भर में एक बार आने वाला ये दस लक्षण धर्म स्त्रियों का ही ठेका हो, ऐसा हो गया ठेका दे दिया, ये तो धर्म का कार्य तुम्हारा और संसार का कार्य हमारा, ऐसा तो नहीं समझते हो? पुरुष पर्याय के लिए भी है और स्त्री पर्याय के लिए भी है, धर्म जो करेगा उसी के लिए वो लगेगा, दूसरा करेगा और दूसरे के लिए लगेगा, ऐसा होता है क्या? घर में स्त्रियां धर्म करे और पुरुष को पुण्य लगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन लोग समझते हैं आप कर रहे हैं ना, आपका करना और हमारा करना एक ही बात है, आप कर लिया तो हमको लग गया, बहुत समझौता कर लेते हैं बहुत आसानी से, और ऐसा कभी नहीं कहते आपने खाना खाया कि नहीं खाया, हमने तो खा लिया, आपने खा लिया ना, मुझे खाने की जरूरत ही नहीं, पेट तो मेरा भरा हुआ ही रहता है हमेशा, मुझे खाने की जरूरत नहीं, तुम लोगों ने खा लिया क्या? नहीं खा लिया, मुझे खाना ही नहीं पड़ता, आप लोगों ने खा लिया तो मेरा पेट भर जाता है, यानी उधर से आहार इधर आता है, वो पाइपलाइन है, समझे? एक के भोजन करने से दूसरे का पेट नहीं भरता, सभी लोग स्वतंत्र स्वतंत्र ही भोजन करते हैं पेट भरते हैं, लेकिन धर्म तो ठेका दे करके करते हैं और ये समझते हैं आप समय शिखर होकर के आ जाओगे तो मुझे भी पुण्य लगता है, ये नहीं जाएंगे और उनके आने के बाद उन्हीं के पैर पड़ते हैं तो उनके पांव क्या, तीर्थंकरों के पांव हैं। यश पूछेदार नोट लिया और धर्म माड़ बंद मत और काल बिल्कुल तीवर कोई करो इवर हो गर धर्म माड़क हाँ संज्ञा का धर्म दागा धर्म का हिंग मारते रही, संसार का हंग मारते रही। जो भोजन करके आया आपने भोजन किया, किया तुम्हारा पेट भर गया, हमारा भी पेट भर गया। अब उस दिन नहीं खाना, उपास रहना उस दिन, क्योंकि जो भोजन करके आया है उसका पांव पड़ने से पेट भर जाता। धर्म स्वतंत्र रूप से करना होता है, जैसे भोजन स्वतंत्र रूप से हम करते हैं। धर्म क्या एक्स्ट्रा चीज है कि एक के करने से दूसरे दूसरे के लिए हो जाता है? धर्म भी भोजन की तरह है, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। पत्नी धर्म करेगी तो पत्नी स्वर्ग और मोक्ष जाएगी, पति नहीं करेगा तो वो त्रेसगढ़ नरक ही जाएगा, भले ही पांव पड़ ले पत्नी का, समय से कर होकर के आई हो पांव पड़ता। जिस जो करेगा उसी के लिए लगता है, और ये सिद्धांत है, नियम है। भावों से धर्म होता है, और ये दस लक्षण धर्म श्रावक के जीवन में आते हैं, मुनि के जीवन में तो सदा रहते हैं। धर्म दस धर्म हर क्षण रहते हैं। क्यों? क्योंकि परिग्रह ही नहीं है तो दस धर्म तो रहेंगे ही रहेंगे। परिग्रह के अभाव में ही ये टिकते हैं, परिग्रह के अभाव से ही जीवन में रहते हैं, आते हैं। मुनि के जीवन में धर्म सतत है, मुनि को देख देख करके श्रावक क्या भावना बाता है, मुनि जैसा जीवन में कम से कम 10 दिन तो जीऊं। मुनि क्या होते हैं और उनका उत्तम क्षमा क्या होता है, मार्दव क्या होता है, शौच क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसकी अनुभूति लेने के लिए 10 दिन ये पर्व के दिन आते हैं। ये आध्यात्मिक पर्व जीवन में जो श्रावक नहीं मानता है, मनाता है, जो नहीं मनाता है वो श्रावक ही नहीं, श्रावक की कोटि में नहीं है वो। ये 10 धर्म पत्नी के लिए आते हैं क्या? सामूहिक रूप से सबके लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। विशेष तौर से मेरा कहना है पुरुष वर्ग को इसमें रुचि लेना चाहिए, स्त्रियां तो लेती ही हैं। आज तक धर्म की महिमा को समझी नहीं, कोई बात नहीं, आज तक का अज्ञान अंधकार हमारा जीवन उसी में चला गया। लेकिन कम से कम अपने जीवन में अब जागना चाहिए। ये 10 दिन जीवन को निर्मल बनाने के लिए आते हैं। संसार कितने दिन करते हैं? 365 में 10 दिन माइनस किया, कितने बच गए? 355। 355 दिन बचते हैं। 355 दिन तक तो हम पाप करते हैं, देखो, और 10 दिन धर्म करते हैं, तो 355 दिन तक बांधा हुआ पाप कर्म 10 दिन में क्या नहीं धुलता, साफ नहीं होता? अवश्य होता। एक साल का क्या भाव भाव में कमाई हुए पाप को हम 10 दिन में साफ कर सकते हैं। इसलिए ये आते हैं, आत्मा को साफ करने के दिन हैं ये 10 दिन, आत्मा को निर्मल बनाने के दिन हैं 10 दिन। इसलिए इनको आध्यात्मिक पर्व कहा है। श्रावक 10 ही दिन अध्यात्म की साधना कर पाता है, और ये हो जाता है वो 10 दिन के लिए मैं मुनि हूँ कह करके घर में रहता है। और क्या क्या नहीं करता? जो मुनि महाराज जो नहीं करते वो कुछ भी नहीं करता। मुनि महाराज क्या नहीं करते? आरंभ आदि क्रिया कुछ भी नहीं करते, तो उस 10 दिन के लिए अपनाता है वो। आरंभ आदि कुछ भी क्रिया मैं नहीं करूंगा, दुकान नहीं करूंगा, खेत का काम नहीं करूंगा, 10 दिन के लिए छुट्टी। महाराज जी तो ऐसा करना तो असंभव है, वहां तो भैंस मंदी हुए, वो आए करते थे तो घास डालने के लिए जाना ही पड़ता है। पेट में कुएं चुभने लगे उसके भी, आए करेगा तो वो घास डालने के लिए जाना पड़ता है, वो आरंभ की क्रिया करनी ही पड़ती है। तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे के लिए सौंप दो, 10 दिन के लिए एक नौकर लगाओ, कोई बात नहीं। और दुकान चलने के लिए, दुकान चलाने वाले की भैंस नहीं होती, होती क्या दुकान में भैंस? दुकान में भैंस नहीं होती, तो वहां पर सवाल ही नहीं। घर का कोई अन्य सदस्य हो उनको दुकान में बिठाओ, कम से कम एक घर में एक व्यक्ति मुक्त हो जाओ, काय के लिए? धर्म के लिए। दुकान वाले को तो सभी लोग मुक्त हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए भैंस है उनकी जरा समस्या है। तो भैंस है तो 10 दिन के लिए किसी दूसरे को दे दो उसको, वो भी मुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। और ऐसा हो जाओगे तो फिर इसके लिए तो आरंभ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा महाराज, ये कैसे? तो उसकी भी व्यवस्था कर लेते, शुद्ध भोजन जब संडे के दिन शाम को बनता ही है तो 10 दिन ये बन जाए, घर जाना ही नहीं। घर जाना ही नहीं, भगवान सब बना के रेडीमेड दे देंगे, भरोसा रखो। 10 दिन भूखे नहीं रहोगे, उपवास करोगे तो अगले भाव में डबल भेज देंगे भोजन। 10 लक्षण में उपवास करोगे, अगले भाव में रिजर्वेशन भोजन का। उपवास नहीं भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार भोजन करो मुनि के समान, एक बार भोजन करो और पूरे दिन मुनि के समान जीवन जियो, स्त्री आरिका के समान और पुरुष मुनि के समान जीवन जिए, ऐसा मनाना चाहिए। ये 10 धर्म लोग कैसे मनाते मालूम? पूजा से। ठीक है, पूजा मना नहीं करता, इधर का चावल इधर रखते हैं, पूजन करते हैं, 10 लक्षण संपन्न हो गया, क्या आया इससे? पूजन मात्र धर्म है क्या? उधर आरंभ सारंभ छूटा नहीं, पाप तो निरंतर आ रहा है 365 दिन में, और इन 10 दिनों में अंतर क्या है? केवल एक पूजन का ही तो फर्क पड़ा, बाकी पापाश्रव पाप कर्म का बंध रोका क्या, संवर हुआ क्या? 10 दिन पाप से बचना है, ये असली धर्म है। पूजन करो या ना करो लेकिन 10 दिन पापा सब से बचो, ये है 10 धर्म, आध्यात्मिक पर्व मनाने की तरीका। और ऐसे ही मनाना चाहिए, इसलिए नियुक्त हुए हैं 10 दिन। साल भर में 10 दिन क्यों आते हैं? ये पाप क्रियाएं छोड़े इसलिए आते हैं, और पाप कर्मों को छोड़ा नहीं और केवल पूजन से पूर्ण कर लिया 10 लक्षण पर्व को, तो उसका पूरा श्रेय नहीं मिला। कितना मिला? 100 का 100 तो नहीं मिल पाएगा पूजन के माध्यम से, हम कह सकते हैं उसमें से 10% जरूर मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि 10 रुपए का द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो 10% तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो भगवान से कहेंगे आप भगवान कुछ भी नहीं दे रहे हो, 10 रुपए खर्चा हो गए और 10% भी कुछ नहीं आ रहा है हमको, थोड़ा बहुत तो मिलता है। लेकिन ये पर्व थोड़ी बहुत मना करके पूर्ण करने के लिए नहीं आते, सच्ची पर्व की उपासना आराधना, सच्चे पर्व की ये पद्धति जो है आरंभ क्रियाओं से मुक्त होकर के मनाने की ही है। उत्तर भारत में भी श्रावक हैं, वो भी मनाते हैं, जो ज्ञानी श्रावक हैं, जिनको ये समझ में आ रहा है मोक्ष मार्ग, आत्म कल्याण, कर्म निर्जरा, ये संसार इसकी हेयता उपादेयता समझ में आ रहा है, वो कैसे मना रहे हैं? मुनि महाराज जहाँ रहते हैं, आचार्य श्री के सानिध्य में, आचार्य विद्यासागर महाराज जहाँ रहते हैं, अपने गुरु महाराज जहाँ रहते हैं, उनके सानिध्य में हजारों श्रावक पहुंच जाते हैं, 10 दिन के लिए छुट्टी, घर के लिए छुट्टी, पैसा दे दिया, हमको 10 दिन यहीं रहना है, भोजन शुद्ध भोजन वहाँ तैयार होता है, 10 दिन वहीं रहना है, अध्ययन करना है, प्रवचन सुनना है, तत्व चर्चा करना है, सामायिक करना है, 24 घंटे मुनि महाराज जो क्रिया करते हैं वही करना है। कम से कम इस भाव में मुनि तो नहीं बनना है, तो मुनिवत जीवन हर साल 10-10 दिन जीते जीते भी जाएंगे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। 355 दिन तो पाप में जा रहे हैं, धर्म में कितने दिन जाना चाहिए? 10 दिन ही जाना चाहिए, यानी उल्टा नहीं करोगे आप। 10 दिन संसार में जाएं और 355 दिन धर्म में जाएं, ऐसा क्यों ना किया जाए? वो अच्छा है, बैलेंस वजन उसका ये बढ़ जाए तो उसका परिणाम अलग है, और ऐसा कोई तैयार हो जाए तो 10 दिन भी क्यों रखेगा, वो तो मुनि ही बन जाएगा। ऐसा है ना, मुनि नहीं बन पा रहा है इसलिए 10 दिन कर रहा है वो। तो ये जो 10 दिन आ रहे हैं, आते हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। यहाँ समोचरण की रचना होने वाली, इसी हाल में जहाँ आप लोग बैठे हैं, समोचरण के चारों ओर बैठ करके भगवान की उपासना करेंगे, अरहत भगवान की 10 लक्षण पर्व मनाएंगे, एक एक धर्म के संबंध में हर रोज प्रवचन भी चलेंगे, उत्तम क्षमा क्या होती है, दोपहर को प्रवचन और सुबह पूजन, और 16 कारण भावनाएं भी पूजन होता है, पूजन करते हैं, 16 कारण भावनाओं के संबंध में भी प्रवचन आदि चला सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। तो वो 16 कारण पहले से ही शुरू होता है, कौन सी तारीख शुरू हो रहा है? 13 तारीख 12 तारीख 16 कारण 12 तारीख शुरू होता है, और 10 लक्षण 26 क्या 16 तारीख 16 तारीख शुरू होता है। तो दोनों में भाग ले सकते हैं लेने वाले, और आप अपनी व्यवस्था करें, जो 10 दिन के लिए 10 लक्षण में आरंभ सारंभ आदि पाप कार्य से, संसार के कार्यों से मुक्त होकर के धर्म साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था होने वाली है। आप व्यवस्थापकों से चर्चा करें तो सब जानकारी देंगे किस तरह से आप उनको करना है, सभी व्यवस्था हो सकती है, और बाहर से भी लोग आ सकते हैं, और यहाँ पर तो मेरी प्रेरणा विशेष रूप से यहाँ तो है ही, बाहर से आने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 10 दिन यहीं रहे, घर नहीं जाना, घर में खबर देना कि 10 दिन के लिए हम मुनि बने हैं, आना हो तो आओ, हम मुनि हैं, दर्शन करके जाओ, और आप लोग आरिताएं बने 10 दिन के लिए, आना हो तो आओ, दर्शन लेके जाओ। आरी का वत जीवन जीना है, पाप को रोकना है केवल 10 दिन, वही सच्ची आराधना है, और इस प्रकार आरंभ सारंभ से आप बच जाते हैं और पूजन नहीं करते हैं तो भी आपको 90% लाभ मिलता है, पूजन का 10% लाभ मिलेगा, पर आरंभ से मुक्त होकर के आप यहीं बैठे रहेंगे तो आपको 90% लाभ मिलेगा, ये गारंटी है। पाप करते हुए पूजन करना ये कोई संवर का कारण नहीं होता, आश्रय और बंद चल रहा है, अर्थ ये हुआ इधर से इतना कमाया और उतना गमाया, कमाया गमाया, कमाया गमाया, ये पूजन पूजन का फल है। लेकिन आरंभ से बच करके यदि इस दस लक्षण को मनाएंगे तो जितने कमाया वो बैलेंस में जा रहा है, गमाया कुछ भी नहीं। संवर पूर्वक निर्जरा करना है, संवर पूर्वक धर्म का अर्जन करना है, तो उसका बैलेंस बनता है, अगले भाव में काम आता है। तो अभी तो कितने दिन रह गए, कितने दिन, 25 दिन रह गए, 25 दिन। आप घर में चर्चा करें, परस्पर में चर्चा शुरू हो जाए कि महाराज ने इस प्रकार से प्रवचन में प्रेरणा दी है और हमें किस प्रकार से आरंभ सारंभ आदि कार्यों से बच करके पूजन करना चाहिए, हम कितना कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी घर में पहले से ही बनाए। 10 दिन की चिंता छोड़ करके यहाँ आना है और ऐसा आना है घर के तरफ मुड़ करके भी नहीं देखना, 10 दिन के लिए कम से कम एक घर का एक पुरुष भी आ जाए, एक पुरुष, दुकान चलने वाले चले उसके ऊपर छोड़ दो, या सभी को करना हो दुकान बंद कर दो, 10 दिन के लिए दुकान बंद करो, कोई बंद करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। घर में 10 दिन तक अगर 6 लोग हैं और 10 दिन तक धर्म किया, पुण्य किया, तो यह पुण्य क्या आपको 10 दिन में जो आदाय रुक गया है उसका परिणाम नहीं देगा, क्या इस पर विश्वास नहीं है? धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, पाप रहित आश्रव से रहित धर्म की रक्षा करता है, पुण्य उसकी रक्षा करता ही है, गारंटी है। महावीर भगवान गारंटी दे रहे हैं तो हम कौन देने वाले हैं? महावीर भगवान ने ये गारंटी दी है कि पुण्य पर, धर्म पर विश्वास करोगे तो पुण्य पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, पुण्य तो तुम्हारी छाया है, लक्ष्मी साथ चलती है धर्मात्मा के। पुण्य किसके पास आता है, धर्मात्मा के पास आता है या अधर्मात्मा के पास? 10 दिन जो घर छोड़ेगा उसी के पास पुण्य आने वाला है, और घर छोड़े बिना कर रहा है तो पाप को भी बांध रहा है और पुण्य को भी कर रहा है। 10 पाप प्लस हो गए, 10 पुण्य प्लस हो गए, जो कहते हैं बैलेंस न कम हुआ न बढ़ा। 10 दिन नहीं सही, 9 दिन छोड़ो, मन बनाओ, बन सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। मन बनाने कोई असाध्य है क्या? अर्थ पुरुषार्थ 355 दिन के लिए ही परमिशन है, शास्त्र का आधार पूछोगे तो। अर्थ पुरुषार्थ के लिए कितने दिन परमिशन है? 355। 10 दिनों को भी उसमें प्लस करते हो तो अपराधी हो, सावध धर्म के कानून के अनुसार अपराधी सिद्ध होते हैं हम। महाराज छोड़ना नहीं होता, छोड़ना हो सकता है, अभी तो पता चल गया है, उस पर चिंतन करो, सोचो, सोच करके उससे निवृत्त होने का कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से हो सकता है। 5:30 आपका बज गया है, टाइम पूरा हो गया है, जिनवानी करेंगे।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी, जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीशनवा से कर्म हरो माँ, अब तक हम इश्यांद रहे, अब तक हम इश्यांद।